पंचाध्यायी लेक्चर नंबर 19। ओ नमः सिद्धेभ्यः, ओ नमः सिद्धेभ्यः, ओ नमः सिद्धेभ्यः, ओ शुद्धात्मने नमो अरिहंता, नमो सिद्धां, नमो आयरियां, नमो वज्रायां, नमो लोहे सौवसा तत्वं सल्लाक्षणिकं सन्मात्रं वायतः स्वतः सिद्धं तस्मादनादिनिधनं स्वसहायं निर्विकल्पं च। यह ग्रंथना श्री पंचाध्यायी है और अभी हम आए हैं 248 नंबर के श्लोक पर, पृष्ठ संख्या 54। उत्पाद व्यय और द्रव्य की बात चल रही है कि द्रव्यार्थी के नय से न उत्पाद है न व्यय है और न द्रव्य है, और पर्यायार्थी के नय से उत्पाद भी है, व्यय भी और द्रव्य भी है। ये बात हमने यहाँ देख ली थी। अब इसी पर शंकाकार शंका पूछ रहे हैं। श्लोक नंबर 248, यहाँ पर भी सेकंड लाइन में यदि वह द्रव्य ब हो गया, वो व्य कर द्रव्य द्रव्येन पढ़ेंगे हम श्लोक। ननु चोत्पादेन सता कृतमसद, फिर से ननु चोत्पादेन सता कृतमसतैकेन वा व्ययेनाथ यदि वा द्रव्येन पुनः यदवश्यं तत्रयेण कथमिति चेत्। 248 नंबर का श्लोक पढ़ा भी हमने। शंकाकार इसमें पूछ रहे हैं, या तो सतरूप उत्पाद स्वरूप ही वस्तु मानो, पूरी वस्तु को या तो उत्पाद रूप मानो, या असत रूप व्यय स्वरूप ही वस्तु मानो, अथवा द्रव्य स्वरूप ही वस्तु मानो, तीनों स्वरूप उसे कैसे मानते हो। अब ये शंकाकार की शंका क्या है उसको भावार्थ में समझा रहे हैं। इससे पहले यह सिद्ध करके आए हैं कि उत्पाद व्यय द्रव्य एक समय में एक सत के ही पर्यायार्थिक नय से, यानी पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से सत का उत्पाद व्यय और द्रव्यता है। इस पर शंकाकार पूछता है कि जब एक ही समय है और एक ही सत है तो कोई एक ही कहना पर्याप्त है, तीनों के आवश्यक कथन से क्या लाभ। यानी या तो उसको उत्पाद रूप मानो, या व्यय रूप मानो, या द्रव्य रूप मानो, तीनों क्यों कह रहे हैं, ये उसकी शंका है। उसका समाधान करें 249 से 260 तक। 249 में वो बिना हुआ है, वो बिना करना सेकंड लाइन में, पेज नंबर 55 में 249 नंबर का श्लोक पढ़ रहे हैं, क्योंकि संस्कृत में बिना शब्द नहीं आता, हिंदी में बिना बिना बिना। ये जो शंकाकार ने शंका पूछी एक किसी को मानो, इस पर पढ़ते हैं। तन्नय दबिना भाव प्रादुर्भाव ध्रुव व्ययानां हि यस्मादेकेन विना न स्यादितरद्वयं तु तन्नियमात्। यानी एक के बिना दूसरे दो नहीं होगे नियम से, है ना। ये सेकंड लाइन में लिखा था, अभी हम पढ़ेंगे इसको हिंदी में। उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है, क्योंकि यत अविना भाव, क्योंकि कहाँ से लिखा है, तन्न यत चाहिए, ठीक है, क्योंकि उत्पाद व्यय और द्रव्य इन तीनों का नियम से अविनाभाव है। अविनाभाव प्रादुर्भाव ध्रुव व्ययाना, प्रादुर्भाव यानी उत्पाद, ध्रुव तो ध्रुव है और व्यय, ये उत्पाद के लिए प्रादुर्भाव शब्द यहाँ श्लोक में लिया है। देखो ऊपर, यानी उत्पाद व्यय और द्रव्य इन तीनों का नियम से अविनाभाव है। अविनाभाव है तीनों हो गए तो दूसरे हो गए ही हो गए, क्योंकि एक को छोड़कर दूसरे दोनों भी नियम से नहीं रह सकते हैं। एकेन बिना न स्यात् इतर द्वयम्, और वो भी नियम से कह रहे हैं। आगे फिर
तत्नियम
250 समाधान ही चलेगा अभी 260 तक। अपि च द्वाभ्याम ताभ्याम अन्यतमाभ्याम विना न चान्यतरम् एकं वा तदवश्यं तत्रयमिह वस्तु संसिद्ध्यै। अथवा बिना किन्हीं भी दो के कोई एक भी नहीं रह सकता। यहाँ कहते एक को छोड़कर दूसरे दोनों नहीं रह सकते, अब कहते दो को छोड़कर एक भी नहीं रह सकता। इसलिए यह आवश्यक है वस्तु की भले प्रकार सिद्धि के लिए उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों एक साथ हो, तभी तो वस्तु की सिद्धि हो सकती है। 251 अथ तद यथा विनाशः प्रादुर्भावं विना न भावीति नियतम भावस्य पुनर्भावेन पुरस्सरत्वाच्च। तीनों का परस्पर अविनाभाव है, इसी बात को स्पष्ट किया जाता है कि विनाश बिना उत्पाद के नहीं हो सकता। यानी हमारी भाषा में उत्पाद के बिना विनाश नहीं हो सकता, तो विनाश बिना उत्पाद के नहीं हो सकता, क्योंकि किसी पर्याय का अभाव नियम से भाव पूर्वक ही होता है। जिसका भाव है वो अभाव रूप हो जाती बात है। हमने ऐसी शक्तियां भी देखी थी, क्या कह रहे थे, किसी पर्याय का व्यय होना है तो पहले उसका उत्पाद होए, तभी तो अनंतर समय में उसका व्यय हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर लिखे किसी अन्य पर्याय का उत्पाद और इस पर्याय का अभाव, और उसका अपना उत्पाद पूर्व समय में था, तो भाव पूर्वक अभाव होता है। अब यहाँ पर व्यय और बिना को व्यय और बिना करना 252 में उत्पादोपि न भावी व्ययम् विना वा तथा प्रतीतत्वात् प्रत्यग्रजन्मनः किल भावस्याभावतः कृतार्थत्वात्। उत्पाद भी बिना व्यय के नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी प्रतीति है कि नवीन जन्म लेने वाला भाव अभाव से कृतार्थ होता है। यानी किसी पर्याय का नाश हो तो दूसरी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए कहते उत्पाद जो है वो बिना व्यय के नहीं हो सकता। ये सबको अलट पलट कर वो सिद्ध कर रहे हैं।
हाँ,
इसी को समझाया है, किसी पर्याय का नाश होने पर ही तो दूसरी पर्याय हो सकती है, क्योंकि द्रव्य में एक समय में एक ही पर्याय है। पदार्थ तो किसी न किसी अवस्था में सदा रहता ही है, इसलिए यह आवश्यक है कि पहली अवस्था का नाश होने पर ही कोई नवीन अवस्था हो। 253 उत्पादध्वं सोवा द्वावपि नस्तो विनापि तद्द्रव्यं भावस्याभावस्य च वस्तुत्वे सति तदाश्रयत्वाद्वा। अथवा बिना द्रव्य के उत्पाद वे दोनों भी नहीं हो सकते, क्योंकि ध्रुव वस्तु ही नहीं है तो किसमें उत्पाद होगा और किसका है ना वो पर्याय किसकी होगी, क्योंकि वस्तु की सत्ता होने पर ही उसके आश्रय से भाव और अभाव यानी उत्पाद और व्यय रह सकते हैं। अपि च द्रव्यं न स्यात् उत्पादव्ये द्वयं विना नियमात् यदि ह विशेषाभावे सामान्यस्य च सतोप्यभावत्वात्। अथवा बिना उत्पाद और व्यय दोनों के द्रव्य भी नियम से नहीं रह सकता, क्योंकि द्रव्य तो कायम रहेगा ना कि उत्पाद व्यय नहीं हो गए तो कहते ऐसा नहीं है, क्योंकि विशेष के अभाव में सामान्य सत का भी अभाव ही है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है और विशेष का अभाव मानेंगे तो सामान्य का भी अभाव मानना पड़ेगा। आगे लिखा है देखो भावार्थ में पेज नंबर 55 पर चल रही बात। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, बिना सामान्य के विशेष नहीं हो सकता और बिना विशेष के सामान्य भी नहीं हो सकता। उसका कथन एट ए टाइम एक का हो सकता है मुख्य गौण से, परंतु वस्तु में सामान्य विशेष दोनों ही की सत्ता है ही है। उत्पाद व्यय विशेष है और द्रव्य सामान्य है, इसलिए बिना उत्पाद व्यय विशेष के यानी विशेष के बिना द्रव्य सामान्य नहीं बन सकता। बात ये चल रही कि एक के तीनों की क्या जरूरत है, एक कुछ कहो तो कहते हैं उत्पाद भी है व्यय भी है और द्रव्य भी है, तो उत्पाद व्यय बिना द्रव्य नहीं और द्रव्य बिना उत्पाद व्यय नहीं। पहले हमने एक एक के बिना अन्य दो नहीं लिखा, फिर दो के बिना एक नहीं, ये भी सिद्ध कराए। इसी प्रकार बिना द्रव्य सामान्य के उत्पाद व्यय विशेष भी नहीं बन सकते। 55 पेज पर नीचे आए हम, 255 नंबर के श्लोक पर आ गए। यानी ये तीनों ही होते हैं और युगपत होते हैं और अविनाभावी है, ये बात सिद्ध कर चुके। एवं चोत्पादादि त्रयस्य साधीयसी व्यवस्थे नैवान्यथान्य निन्नव वदतः स्वस्यापि घातकत्वाच्च। इस प्रकार वस्तु में उत्पाद व्यय द्रव्य की व्यवस्था घटित करना चाहिए, अन्य किसी प्रकार उनकी व्यवस्था घटित नहीं की जा सकती, क्योंकि दूसरों के न मानने से अपनी मान्यता का भी विघात होता है। दूसरों के न मानने से अपनी मान्यता का भी विघात होता है, नहीं वो अन्यथा अन्य निर्णयों को बदता स्वस्यापि घातकत्वाच्च। कही हुई व्यवस्था ही ठीक व्यवस्था है और तीनों को एक साथ मानने से ही यह व्यवस्था बन सकती है। तीनों में से किसी एक का अथवा दो का अभाव मानने से बाकी के दो अथवा एक भी नहीं ठहर सकता है। नहीं लिखी उन्होंने अन्य दो अन्य को नहीं मानने पर जिसकी बात कर रहे हैं उसका भी नाश हो जाएगा, यानी अगर व्यय और द्रव्य को नहीं मानते तो उत्पाद का नाश हो जाएगा। निर्णयों का अर्थ होता है दूसरों के न मानने से, न एवं अन्यथा अन्य निर्णय वदतः, न एवं अन्यथा अन्य निर्णय वदतः स्वस्य अपि घातकत्वाच्च। अन्य निर्णय वदतः का अर्थ नहीं किया बराबर, वो तो अर्थ में वो क्लियर नहीं हुआ है, उसमें क्या लिखा है आप जरा पढ़ के बताना वहां से।
आरिते वस्तु उत्पाद में ध्रुव नहीं व्यवस्था घटा भी जो
करना चाहिए। हाँ
बीजी कोई नहीं व्यवस्था से घटा भी चकाती नहीं, केम के बीजाणु विघात करवा थी पोता नो ज विघात करियो अलग लिखा है, क्योंकि दूसरे के न मानने से
मैंने ये तो दूसरे के न माने, तीन में से दूसरे को नहीं मानेंगे तो जिसकी बात है वो उसका घात हो जाएगा, ये बात होता ना। इन्हें अभी किसी एक की बात करें, मान लेते उत्पाद की व्यय और द्रव्य का विघात करने पर अपना विघात हो जाता है
उसका।
भावार्थ है ना, भावार्थ बराबर है यहाँ। हाँ
ઉપર ગયેલી વ્યવસ્થા સાચી વ્યવસ્થા છે અને ત્રણેયને એક સાથે માનવાથી આ વ્યવસ્થા બની શકે છે, ત્રણોમાંથી કોઈ એકમાં અથવા બે નો અભાવ માનવાથી બાકીના બે અથવા
ભાવર્તા તો સેમ બિલકુલ વર્ડ ટુ વર્ડ એક ભી ઠેર નહીં શકતા। मान्यता शब्द डाला है ना इसमें, दूसरों को न मानने से अपना भी विघात होता है, दूसरों के नहीं अपना ही नहीं, वो जो जिस की बात करे उत्पाद का, यानी दूसरे दो नहीं मानेंगे तो उत्पाद का घात आ जाएगा, ऐसे दूसरे दो को नहीं माने तो एक एक का अपना अपना घात होगा। अपनी मान्यता का डाला है तो अपना भी विघात होता है, दूसरों के न मानने से अपना भी विघात होता है, यानी दूसरे दो नहीं मानेंगे तो जो एक हम मान रहे उसका भी विघात हो जाएगा, ये अर्थ इसमें से निकलता है। 256 पहली लाइन में लास्ट है ना, मृगय मानत्य हुआ है, मानस्य चाहिए,
मानस्य
क्या है उसमें, मानस्य 256 पढ़ेंगे। अथ तन यथा विसर्गम केवलमेकम हि मृगयमाणस्य असदुत्पादो वा स्यात् उत्पादो वा न कारणाभावात्। उपर्युक्त को ही स्पष्ट करते हैं कि, यानी ऊपर बताया हुआ है उसी को स्पष्ट करते हैं कि जो केवल एक उत्पाद को ही मानता है उसके मत में असत का उत्पाद होने लगेगा, अथवा कारण का अभाव होने से उत्पाद ही न होगा, कारण का अभाव पहले व्यय ही नहीं होगा तो उत्पाद कैसे होगा। पहले बता ना, एक को ही मानेंगे तो अन्य दो को नहीं मानेंगे तो अपना विघात होता है, उसी को ये बता रहे हैं। अभी 257 में पढ़ेंगे, यानी भी अकेले उत्पाद को मानेंगे तो भी वो ठीक नहीं, वो बराबर घटित नहीं होता है, दोष आता है। आगे पढ़ेंगे। अप्यथ लोकयतः किल संहारं सर्गपक्ष निरपेक्षं भवति निरन्वयनाशः सतो न नाशोऽथवाप्य हेतुत्वात्। उत्पाद पर निरपेक्ष केवल व्यय को ही जो मानता है वो उत्पाद पक्ष निरपेक्ष पर नहीं, उत्पाद पक्ष निरपेक्ष यानी उत्पाद रहित मात्र व्यय को जो मानता है, उत्पाद होता ही नहीं बस व्यय ही होता है ऐसा मानेंगे, उसके यहाँ सत का निरन्वय सर्वथा नाश हो जाएगा। सर्वथा नाश हो जाएगा ना, नया कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा है और व्यय हो चुका तो पूरा ही टोटल नाश हो जाएगा। अथवा बिना कारण उसका माना हुआ नाश भी नहीं हो सकता, यानी कारण ही नहीं है ना तो उसका नाश भी नहीं हो सकता। बिना कारण नहीं, कारण के बिना भी नया उत्पाद होना है तो इसका नाश होना था, अभी उत्पाद ही नहीं होगा तो नाश होने की क्या तो एक भी नहीं हो सकता। पहले अकेले उत्पाद को मानने से क्या दोष होता है वो बताया, अकेले व्यय को मानेंगे यानी उत्पाद से निरपेक्ष यानी उत्पाद से रहित तो भी उन्होंने बता दिया। अब कहते उत्पाद और व्यय को भी नहीं मानो, अकेला द्रव्य को मानो तो क्या दोष आएगा वो अभी बताएंगे 258। अथ च द्रव्यम केवलम एकम किल पक्ष मध्यवसतश्च द्रव्यम परिणामी स्यात् तदपरिणामाच नापि तद्द्रव्यम्। इसी प्रकार जो उत्पाद व्यय निरपेक्ष केवल द्रव्य पक्ष को ही स्वीकार करते हैं उनके मत में, ऐसे मानने वाले मत भी है ना, उत्पाद व्यय होता ही नहीं सर्वथा नित्य 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 जैसे वैदिक है मान्य, उनके मत में द्रव्य अपरिणामी ठहरेगा और द्रव्य के अपरिणामी होने से उसके द्रव्य भी नहीं बन सकता, क्योंकि हमने देखा है सामान्य विशेषात्मक ही वस्तु होती है, अभी वो परिणामी ही नहीं है तो वो ध्रुवता भी नहीं बनेगी। 259। अथ च द्रव्योपेक्षितम् उत्पादादि द्वयम् प्रमाणयतः सर्वं क्षणिकमिवैतर् सद्भावेवाव्ययो न सर्गश्च। देखो सर्ग का अर्थ क्या है, सर्ग शब्द ऊपर से 3-4 बार आ गया, 256 में भी आया था। उत्पाद के लिए सर्ग शब्द आया है, वे के लिए संहार भी आया है, प्रध्वंस भी शब्द आया था। देखो अभी यह 259 हमने पढ़ा था, द्रव्य निरपेक्ष केवल उत्पाद और व्यय इन दो को ही प्रमाणभूत मानता है। अभी पहला तो अकेला एक एक को मानता था, उसमें क्या दोष है वो बताया। अब कहते द्रव्य के निरपेक्ष अकेला उत्पाद और व्यय ही मानने वाले के यहाँ दो को ही प्रमाणभूत मानता है, उसके यहाँ सभी क्षणिक की तरह हो जाएगा। अथवा सत पदार्थ के अभाव में न तो व्यय ही बन सकता है और न उत्पाद ही बन सकता है, कुछ कायमी वस्तु है तभी तो अवस्थाओं का नाश और उत्पाद हो सकता है। 260। एतद् दोष भयादिह प्रकृतम चास्तिक्यमिच्छता पुंसा उत्पादादि नामयम् अविनाभावेव गंतव्य। अवगंतव्य ने वो समझना चाहिए मानना चाहिए, ऊपर कहे हुए दोषों के भय से एतद् दोष भयात् आस्तिक्य के चाहने वाले पुरुष को प्रकृत में वर्तमान में सांप्रत में चालू विषय में उत्पाद आदि तीनों का ही अविनाभाव मानना चाहिए। इसीलिए इतने सारे श्लोकों में यही चर्चा चली, तीनों ही युगपत होते हैं और तीनों ही होते ही उनका बिना भाव है, एक के बिना अन्य दो नहीं, दो के बिना अन्य एक नहीं। भावार्थ तीनों एक साथ परस्पर सापेक्ष है, यही निर्दोष सिद्ध है। उसके लिए प्रमाण बताते हैं कि मैंने कहां से बात निकाली, उत्पाद व्यय द्रव्य का सब विषय श्री प्रवचन सार गाथा 99, 100, 101, 102, 104, 105 पर से ही लिया है। ये पहले हमने देखा था ना, ये तीनों को ये परिणति रूप लिया है तो प्रवचन सार में ये विषय आया था। वस्तु निरूपण महाअधिकार में उत्पाद व्यय द्रव्य को वर्णन करने वाला पांचवा अवांतर अधिकार समाप्त हुआ, और वस्तु निरूपण पहला महाअधिकार भी समाप्त होगा। पहले महाअधिकार में हमने द्रव्य को देखा, गुण को देखा और पर्याय को देखा। द्रव्य को भी देखते समय उसका एक हमने लक्षण बांधा था, गुण पर्यायवत द्रव्य, उसी को उत्पाद वे द्रव्युक्तम सत, उसके अपेक्षा भी सत को यानी द्रव्य को हमने देखा था। उसके बाद पर्यायों की बातें बताई थी, उसमें व्यतिरेक कैसे होता है, क्रमवर्ती कैसे होता है, उसको भी सिद्ध किया। और ये उत्पाद वे द्रव्य ये परिणति में पर्याय की अपेक्षा से घटित किया है उन्होंने, उसकी अभी बात चली। यहाँ तक तो ये बात हुई, अब ये पूरे अधिकार का परिशिष्ट यहाँ कहेंगे। वस्तु का प्रमाण लक्षण, परिशिष्ट का अर्थ होता है जो बताया हुआ भी बता सकते हैं, अन्य भी अन्य उसमें एडिशनल भी बातें बता सकते हैं। 261 सेकंड लाइन में जो लास्ट है, शुद्ध शुद्ध अर्थम, तो थ के ऊपर ये रफा तो चाहिए, बिंदी नहीं चाहिए। हाँ, अर्थम के लिए आगे मो लिखा है आधा। अब 261 नंबर पढ़ेंगे। उक्तम गुण पर्यायवत् द्रव्यम यत्तद्व्ययादि युक्तम सत् अथ वस्तु स्थितिरिह किल वाच्यानेकान्त बोध शुद्ध्यर्थम्। शुद्ध्यर्थम् अनेकांत की बोध की शुद्धि के लिए। देखो, जो द्रव्य गुण पर्याय वाला है, गुण पर्यायवत् द्रव्यम् यत, उसी को क्या गया, व्ययादि युक्तम। तो जो द्रव्य गुण पर्याय वाला है वही द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य युक्त सत है। ये तो अभी अभी हमने देखा था, रिपीट किया था ना, रिवीजन तरीके से। यह द्रव्य का लक्षण प्रमाण दृष्टि से कहा। अब अनेकांत ज्ञान की शुद्धि के लिए वस्तु के स्वरूप का विशेष विचार करते हैं। द्रव्य गुण पर्याय पर नए और प्रमाण लगाने की पद्धति 747 से 750 तक जो तत्काल समझने को आगे दिए जा रहे हैं। ये श्लोक इसी ग्रंथ के प्रथम खंड के अंत के हैं, भावार्थ के लगे दृष्टि परिज्ञान में वो दिए हैं लास्ट में इसके। अब 747 लिख रहे हैं यहाँ पर, 261 के बाद 747 यानी आगे जो आने वाले हैं ना, 747 48 49 50 वो यहाँ दे रहे हैं। यहाँ तो केवल एक ही श्लोक था 261 नंबर का, कि जो गुण पर्यायवत् द्रव्य है वही उत्पाद वे द्रव्य उत्तम सत वाला द्रव्य भी वही है। एक ही द्रव्य को दो अपेक्षा से समझाया है, ये उन्होंने उसका तात्पर्य निकाला था। यानी ये अधिकार तो यहीं पर समाप्त हो जाता है। वैसे ये 261 वाली जो है वो द्वितीय प्रथम खंड के द्वितीय पुस्तक में आगे आता है, वो आगे के अधिकार में। यहाँ तो परिशिष्ट में उसको लिया है और आगे के भी कुछ लोग यहाँ बता रहे, यानी अधिकार तो समाप्त हुआ है यहाँ। अब 747 जो आगे आने वाला है उसको यहाँ पर उद्धृत करके समझा रहे हैं। पहली लाइन में सेंटर में शुद्ध द्रव्यार्थिकस्य, थी के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए, पढ़ेंगे। तत्वम अनिर्वचनीयम् शुद्ध द्रव्यार्थिकस्य भवति मतम् गुणपर्यायवद्द्रव्यम् पर्यायार्थिकनयस्य पक्षोयम्। तत्व यानी द्रव्य अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय वचन से नहीं कहा जा सकता, यानी अभेद अखंड है, क्योंकि वचन से कुछ भी कहो तो उसमें भेद हो जाएगा। यह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कहना है। द्रव्य गुण पर्याय वाला है यानी भेद रूप है, यह पर्यायार्थिक नय का कहना है। पर्याय की अपेक्षा से या इन्हें भेद की अपेक्षा, पर्याय का अर्थ होता है भेद करना, गुणों के समूह को या अनादि अनंत पर्याय के समूह को हम द्रव्य कहते हैं, ये भेद से कथन हुआ, उसी को पर्यायिक ने का कथन कहेंगे। भावार्थ, तत्व में अभेद बुद्धि का होना शुद्ध द्रव्यार्थिक न है। अभेद बुद्धि का होना है ने? वो उसको अभेद रूप से समझना, जान ज्ञान में लेना, क्योंकि नई की बात है ना। प्रमाण में तो वो भेदाभेदात्मक कहेंगे, सामान्य विशेषात्मक कहेंगे, परंतु यहाँ अभेद की दृष्टि से देखना है, यानी उसको क्या कहेंगे, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक न है। और उसमें भेद बुद्धि का होना पर्यायार्थिक न है। पर्यायार्थिक न क्या करता है, तो द्रव्य को भेद की दृष्टि से देखता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक न की दृष्टि का कथन आठ, ये आठ नंबर का श्लोक याद है, चौरासी, अट्ठासी, ये तो हम पढ़ चुके सब, 216 और 247 में किया है, क्योंकि अभी पहले अधिकार में हम कहाँ क्या पढ़ चुके हैं उसके बाद यहाँ बता रहे हैं। और पर्यायार्थिक न की दृष्टि का कथन 72, 73, 86, 84 उल्टा पुल्टा हुआ, 88, 247 में किया, क्योंकि 247 में दोनों बातें बताई थी, द्रव्यार्थिक नहीं से ऐसा है, पर्यार्थिक नहीं से ऐसा है। अनिर्वचनीय, अभेद, अखंड, शुद्ध और निश्चय, ये सारे शब्द कैसे, पर्यायवाची, इन्हें एकार्थवाची, उनका मीनिंग एक ही है, अभेद के द्योतक है, यानी अभेद वस्तु को बताने वाले हैं। 748 यदिदम् अनिर्वचनीयम् गुणपर्यवत् तदेव नास्त्यन्यत्, गुणपर्यवत् यदिदम् तदेव तत्त्वं तथा प्रमाणमिति। देखो क्या, यद इदम् अनिर्वचनीयम्, जो यह अनिर्वचनीय है, किसकी बात चल रही, द्रव्य की, जो यह अनिर्वचनीय है, आगे क्या लिखा, गुण पर्यवत तदेव नास्ति अन्यत्, यानी वही गुण पर्यवत है, उसको दूसरा नहीं है, यानी जिस द्रव्य को हमने अनिर्वचनीय ने अखंड कहा, वही द्रव्य गुण पर्यवत है, दूसरा नहीं है, दूसरी की बात नहीं है, एक ही दो अपेक्षा से कथन है। यह देखो हम अर्थ में देखेंगे, जो द्रव्य अनिर्वचनीय ने अखंड है, वही द्रव्य गुण पर्याय वाला है, यानी भेद रूप है, दूसरा नहीं है, यानी जिसके हम अभेद रूप द्रव्य की बात कर रहे हैं, वही द्रव्य भेद रूप है। तथा जो द्रव्य गुण पर्याय वाला है, यानी भेद रूप है, वही द्रव्य अनिर्वचनीय है, यानी अखंड है। इस प्रकार भेद अभेद दोनों रूप द्रव्य का कहने वाला प्रमाण है। प्रमाण किसको कहना, वो भेद और अभेद, सामान्य विशेषात्मक हो, भेदाभेदात्मक हो, एकानेकात्मक हो, नित्यानित्यात्मक हो, तो इन्हें पूरी वस्तु को बताने वाला है। जो यह है वही दूसरा है, जो सामान्य वही विशेष रूप है, तो ये क्या हुआ, प्रमाण। अब ये जो हमने दो ऊपर पढ़े थे श्लोक, उसका भावार्थ कह रहे हैं, शुद्ध द्रव्यार्थिक नए, अभी नए वस्तु को किसी एक अपेक्षा से देखता है, दूसरा नहीं किसी अन्य अपेक्षा से देखता है, तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नए वस्तु को अभेद रूप अखंड बतलाता है। पर्यायार्थिक नए वस्तु को भेद रूप खंड बतलाता है। और प्रमाण वस्तु को भेद अभेद दोनों रूप बतलाता है, यानी जो अभेद रूप है वही भेद रूप है, यानी एक साथ उसने कथन, आप कहेंगे कथन एक साथ नहीं हो सकता, परंतु नहीं, जो यह है वही ये है, जो भेद रूप है वही अभेद रूप है, ये हुआ प्रमाण का कथन। किसी अपेक्षा ने पर्यायिक नहीं की अपेक्षा भेद रूप है, ये हुआ पर्यायिक नहीं का कथन। और जो हम कहेंगे द्रव्य दृष्टि से अभेद है, तो ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का कथन। जो भेद रूप है वही अभेद रूप है, यह प्रमाण के बोलने की रीति है। प्रमाण में बोलेंगे क्यों, क्योंकि बोलना है तो क्रम तो पड़ेगा। तो जो हम एक अपेक्षा से कह रहे वही दूसरी अपेक्षा ही साथ 747 और 748 इकट्ठे हैं। 747 की प्रथम पंक्ति में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का, दूसरी पंक्ति में पर्यायार्थिक नय का, और 748 में प्रमाण का विषय बतलाया। प्रमाण दृष्टि से द्रव्य का लक्षण 261 की प्रथम पंक्ति में कहा है। हमने देखा ना, जो गुणपर्यवत द्रव्य कहा था वही उत्पाद वे द्रव्य युक्त है, तो वहां तो वो बात बता चुके थे। अब 749 ये आगे आने वाले हैं, वो यहीं पर बता रहे हैं, ये हमारे इसी अधिकार से लगते हुए विषय है, इसलिए यहाँ कुछ बातें बता रहे हैं। यद्रव्यं तन्न गुणो योऽपि गुणस्तन्न द्रव्यमिति चार्थात् पर्यायोऽपि यथा स्यात् ऋजुनय पक्ष स्वपक्ष मात्रत्वात्। पदार्थ रूप से जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नहीं है, कथनचित भिन्नता है ना उसकी। उसी प्रकार पर्याय भी पर्याय ही है, द्रव्य गुण नहीं है, यह पर्यायार्थिक नय का कहना है, क्योंकि यह द्रव्य गुण पर्याय को भिन्न भिन्न मानकर भिन्न रूप से ही अपने विषय को कहने वाला है। यहाँ रुजु सूत्र नय का अर्थ पर्यायार्थिक नय है। रुजु सूत्र तो वर्तमान पर्याय को बताता है, वर्तमान पर्याय को विषय करने वाले नय को रुजु सूत्र कहते हैं, परंतु यहाँ वो पर्याय की बात कर रहा है, यानी भेद करके बता रहा है, क्या द्रव्य गुण और पर्याय को अलग अलग कहकर उसका लक्षण बता रहे। हाँ, वो तो इसलिए भेद है, और वो भेद करना ही प्रयोजन है पर्याय दिखने का, नहीं तो वस्तु तो एक अखंड है। तो यहाँ रुजु सूत्र शब्द क्यों लिखा, क्योंकि तो पद्य बनाने के कारण पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर लिया। यहाँ पर्याय अर्थी की इतना वहाँ फिट नहीं बैठता था संस्कृत श्लोक बताना, है ना, तो उसके लिमिटेड होते, उसके अक्षरों की संख्या निश्चित होती है, इसलिए रुजु ने शब्द यहाँ ले लिया। रुजु सूत्र ने ऐसा पूरा नाम है उसका, अर्थ थे वर्तमान पर्याय को विषय बनाने वाला नय, परंतु यहाँ ये एक प्रकार का पर्याय ठीक नहीं, परंतु वहां स्पेसिफिकली रुजु सूत्र बताया। अब 750 यदिदं द्रव्यं सगुणो योऽपि गुणो द्रव्यमेतदेकार्थात् तदुभयपक्षदक्षो विवक्षितः प्रमाणपक्षोऽयम्। अब यहाँ दूसरी बात बताएंगे, क्योंकि द्रव्य गुण का एक अर्थ यानी पदार्थ अभेद वस्तु है, इसलिए जो द्रव्य है वही गुण है। पहले कहा था कि द्रव्य वो गुण नहीं है, वहाँ पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा थी, कहते जो द्रव्य है वही गुण है, जो गुण है वही द्रव्य है, यह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का पक्ष है, तथा भेद अभेद इन दोनों पक्षों को कहने में समर्थ विवक्षित जो पक्ष है वह प्रमाण का पक्ष है। जैसे जो द्रव्य गुण पर्याय वाला है वही उत्पाद वे द्रव्य युक्त है, तथा वही अखंड सत अनिर्वचनीय है। पहले दोनों ही भेद करके बताए, गुण पर्याय वाला कहो या उत्पाद वे द्रव्य वाला कहो, वो दोनों ही भेद करके ही बताए उन्होंने, उसी को अखंड सत अनिर्वचनीय कहेंगे। ये द्रव्यार्थिक नहीं हुआ, वो पर्यायार्थिक हुआ, और दोनों मिलकर जो है प्रमाण, जो यह है वही अखंड है, जो भेद वाला है वही अखंड है, ये प्रमाण का पक्ष हुआ। देखो ये प्रमाण का पक्ष जो, और हम कहते हैं पक्षातिक्रांत हो जाता अनुभव के काल में, जो ऐसा है वो वैसा है, ये सारे विकल्प नष्ट हो जाते, जानेगा वो वस्तु को परंतु जानने में ये नए है कि ये प्रमाण कहेगी कि ये जो विकल्पात्मक चल रही थी बातें वो छूट जाती है, वो डायरेक्ट अपने को जानने लगता है, इसलिए वहाँ कहाँ ये इसे कहाँ भाग जाते हैं कहाँ निकल जाते हैं पता नहीं लगता है, ऐसा जो कहा है समय सार में
नहीं
रहता। अभी भावार्थ है इसका 749 और 50 का भावार्थ, जो द्रव्य है वह गुण नहीं है तथा जो गुण है वह द्रव्य नहीं है, परंतु गुण गुण ही है तथा द्रव्य द्रव्य ही है, इसी प्रकार जो पर्याय है वह पर्याय ही है पर द्रव्य या गुण नहीं है, इस प्रकार द्रव्य गुण और पर्याय को भिन्न भिन्न कहना व्यवहार नय का विषय है। मैंने बिल्कुल उसमें सबकी भिन्नता स्पष्ट कर दी। अब कहते हैं जो द्रव्य है वही गुण है और जो गुण है वही द्रव्य है, कारण गुण समुदायो द्रव्यम, इस सिद्धांत में संपूर्ण गुणों को ही द्रव्य कहा है, इसलिए गुण और द्रव्य परस्पर भिन्न नहीं है, परंतु उक्त प्रकार से एक ही अर्थ वाला है, इसलिए गुण और द्रव्य को एक अखंड कहना यह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का पक्ष है विषय है। ये बात ख्याल में तथा तीसरी बात, इन दोनों नयों के पक्ष को जोड़ रूप युगपत विषय करना, एक है द्रव्यार्थिक नय पर्यार्थिक नय, प्रमाण क्या करता है दोनों को युगपद विषय करता है, वो हो गया प्रमाण। नय किसको कहेंगे, यो प्रमाण से जाने हुए वस्तु के एक अंश को विषय करता है उसको हम नय कहते हैं, प्रमाण से जाने हुए कंडीशन है, नहीं तो सर्वथा एक पक्ष को लेके बैठेंगे तो वो नय भी झूठा हो जाएगा। इन दोनों नयों के पक्ष को जोड़ रूप युगपत विषय करना, जैसे जो भेद रूप है वही अभेद रूप है, यह प्रमाण का विषय है। इसलिए बस हम केवल वो अभेद अखंड मैं जीव हूँ शुद्ध हूँ बस ये रखने से नहीं होगा, भेद को जानकर फिर उसको गौण करेंगे अभेद अखंड में समा देंगे तो ये प्रमाण का विषय हो जाएगा। तो कहते जो भेद रूप है वही अभेद रूप है, यह प्रमाण का विषय है, ये दोनों श्लोक इकट्ठे है। 749 में पर्यार्थिक नय का विषय और 750 की प्रथम पंक्ति में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय और दूसरी पंक्ति में प्रमाण का विषय है। इस वस्तु अधिकार में जो द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य का निरूपण किया है उस पर इन चार पद्यों द्वारा नए प्रमाण को घटित करके दिखलाया है। एक गुरु का अक्षर लक्षण ऐसा है, गुरु लिखा है ना, मैंने पेज 114 लिखा है उसमें क्या है देखते हैं। क्षेत्र एकत्व का गुरु, गुरु यानी लक्षण, देखो बीच में 453 के ऊपर, 453 गाथा के ऊपर 114 नंबर का पेज, नहीं तो हमें लगेगा वहाँ गुर कुछ अलग से गलत पड़ा है क्या। गुर का लक्षण अर्थ लक्षण है, ये कहाँ से निकाला, 453 गाथा के ऊपर जो लिखा है क्षेत्र एकत्व का गुर यानी क्षेत्र एकत्व का लक्षण, हाँ ब्रैकेट में लक्षण, तो गुर का लक्षण अर्थ होता है लक्षण, वहाँ बाजू में लिख दो पेज नंबर 58 पर, गुर है ना उसका अर्थ है लक्षण, आपने लिखा था 114, वो तभी लिख के रखा था ना पहले जब हमने पढ़ा था तभी। देखो यहाँ लक्षण क्या बता रहे हैं, व्यवहार भेद का प्रतिपादक है, निश्चय भेद का निषेधक है, उसका लक्षण, व्यवहार का लक्षण बताया
है, जो बताने वाला है वो व्यवहार है।
निश्चय नहीं, इतना ही कहता, ऐसा नहीं, व्यवहार क्या करेगा, भेद कर करके समझाएगा, निश्चय के जाए नेतद ऐसा उसका विषय, यानी न तथा कहो ना उसकी कोई बात नहीं, यानी ऐसा नहीं, ये भेद करके समझाया और कहते ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये भेद नहीं है, ऐसा
कहीं,
यानी अभेद का प्रतिपादक और प्रमाण भेद अभेद दोनों का प्रतिपादक है। ये तीनों के लक्षण बताए, व्यवहार किसको कहना, निश्चय किसको कहना और प्रमाण किसको कहना। नोट, तीनों दृष्टियों का ज्ञान परम आवश्यक है। कोई कहेंगे हमको भेद वगैरह चाहिए नहीं, बस हमें अभेद का करेंगे तो ही नहीं, हम प्रमाण को ही मानेंगे उसमें, तो कहते वो प्रमाण भी ठीक नहीं होगा। तीनों को ही सही रूप से जानना चाहिए, तो उसका तीनों ही दृष्टियों का, निश्चय ने भी, व्यवहार ने भी और प्रमाण का भी ज्ञान परम आवश्यक है, खाली आवश्यक नहीं लिखा। दृष्टि परिज्ञान, परिज्ञान ने पूरा परिपूर्ण ज्ञान सभी ओर से, सर्वांगीण ज्ञान जिसको कहेंगे, ये पूरा भी बहुत मर्म भरा है। ये अभी ये जो दृष्टि परिज्ञान नामक जो भी प्रकरण यहाँ उन्होंने लिखा है सरनाराम जी ने, पढ़ेंगे हम इसको। सत स्वभाव से ही अनेक धर्मात्मक रूप बना हुआ अखंड पिंड है, ये सत्य, ये है अखंड पिंड है, एक परिपूर्ण एक वस्तु है, उसको हम समझने के लिए भेद करेंगे। तो मूल में वो अनेक धर्मात्मक है फिर भी अखंड पिंड है, उसका जीव को ज्ञान नहीं है। ये कैसे समझा ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है ये कहां से निकाला, सही ज्ञान हो जाता तो समय दर्शन हो जाता और फिर वो मोक्ष हो जाता है। इसका जीव को ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान कराने के लिए जैन धर्म दृष्टियों से काम लेता है। दृष्टि नहीं है जो नए अलग अलग, इस दृष्टि से अभी ऊपर बताए ना, तीनों दृष्टियों का ज्ञान परम आवश्यक, तीनों को नए नहीं कहा, कोई नए है और कोई प्रमाण है, इसलिए तीन दृष्टियां बताए, पॉइंट ऑफ
दृष्टि को नए प्रमाण से दोनों,
हाँ दोनों मिलकर दृष्टि कहेंगे, क्योंकि ऊपर तीन दृष्टियां बताइए, एक व्यवहार, एक निश्चय और एक प्रमाण है। तो कहते जगत में अभेद को बिना भेद कोई समझ नहीं सकता, क्या कहा, तो कहते हैं आत्मा, आत्मा को जानो, तो आत्मा को जानो, क्या जानो, क्या है आत्मा, आत्मा क्या है, तो उसको समझाना है, आत्मा जो जिसमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, ये जो है वो आत्मा है। तो आत्मा क्या करता है, ऐसे कायम रहता है, तो कहते नहीं उसमें अवस्था है, वो तो अभी उसके भेद प्रभेद उसकी सब वस्तु व्यवस्था पूरी बताई जाएगी, परंतु है तो आत्मा आत्मा ही, समझने के बाद भी उसको अखंड रूप से ग्रहण करना है, भेदों में नहीं उलझना है, परंतु जब तक भेद नहीं करते हैं वस्तु कैसी है ये समझना बहुत मुश्किल। कोई नई चीज लानी है, मम्मी ने बताया जाओ लेके आओ, क्या होता है, कैसे होता है, फिर उसका वर्णन तो हाँ। जगत में अभेद को बिना भेद कोई समझ नहीं सकता, अतः सबसे प्रथम जीव को भेद भाषा से ऐसा परिज्ञान कराते हैं कि, परिज्ञान यानी पूरा ज्ञान सभी ओर से, कि द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, जो जो है उसको बताया जाता है, द्रव्य है, गुण है और पर्याय है। प्रत्येक का लक्षण सिखलाते हैं कि जो गुण पर्यायों का समूह है वह द्रव्य है इत्यादि रूप से। यानी हरेक का अपना अपना लक्षण बताए, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, इनका लक्षण बताएंगे। इस भेद रूप पद्धति को व्यवहार नये कहते हैं। हमने तो व्यवहार ने क्या कि कुछ क्रियाएं करना, मंदिर जाना, पाठ पूजा करना, व्रत आदि करना, इसको हमने व्यवहार माना। निश्चय ने आत्मात्मा करते और रात दिन वो निश्चय ऐसा है नहीं। किसको कहा व्यवहार? कि भेद रूप जो पद्धति है और सबके वो भेद करके उसके लक्षण आदि समझाएंगे, उसको कहेंगे व्यवहार नये। यह दृष्टि द्रव्य को खंड खंड कर देती है, यानी खंड कर करके समझाती है। इस दृष्टि का कहना है कि द्रव्य जुदा है, गुण जुदा है, पर्याय जुदा है। यहाँ तक कि एक एक गुण, उसका एक एक विभाग, प्रतिच्छेद और एक एक प्रदेश तक जुदा है। यह सब कुछ सीख कर शिष्य को ऐसा भान होने लगता है जिस प्रकार एक वृक्ष में फल, फूल, पत्ते, स्कंद, मूल, शाखा जुदी जुदी सत्ता वाले हैं और उनका मिलकर एक सत्ता वाला वृक्ष बना है, उस प्रकार द्रव्य में अनेक अवयव है और उनका मिलकर बना हुआ एक द्रव्य पदार्थ है। अथवा जैसे अनेक भिन्न भिन्न सत्ता वाली दवाइयों से एक गोली बनती है, वैसे गुण पर्यायों से बना हुआ द्रव्य है, किंतु पदार्थ ऐसा है नहीं। क्योंकि भेद करके समझो तो हमें ऐसा लगता है ये अलग है, ये अलग है, ये सर्वथा हमने भेद कर करके जानने के लिए भेद किया था, तो हमें उसको बिल्कुल अलग अलग एंटिटी समझने लगे। अतः यह तो पदार्थ का गलत ज्ञान हो गया, ये सही ज्ञान नहीं हुआ। यह तो सही ज्ञान करना था, तब आचार्यों को दूसरी दृष्टि से काम लेना पड़ा और उसको समझाने के लिए वे शिष्य से कहने लगे कि देख भाई, यह बता कि आम में कितने गुण हैं। वह सोचकर बोला, चार, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। तब गुरु महाराज कहने लगे, ठीक, पर अब ऐसा करो कि रस तो हमें दे दो और रूप तुम ले लो, स्पर्श राम को दे दो और गंध श्याम को। अब शिष्य बड़े चक्कर में पड़ा और कहने लगा कि महाराज, यह तो नहीं हो सकता, क्योंकि आम तो अखंड पदार्थ है, उसमें ऐसा होना असंभव है। बस भाई, जैसे उस आम में चारों का लक्षण जुदा जुदा किया जाता है पर भिन्न नहीं किए जा सकते, ठीक उसी प्रकार यह जो द्रव्य है, इसमें ये गुण पर्याय केवल लक्षण भेद से भिन्न भिन्न है, वास्तव में भिन्न नहीं किए जा सकते। यह तो तुझे अखंड सत का परिज्ञान कराने का हमारा प्रयास था, एक ढंग था, ये भेद करके समझाने का एक तरीका है कि वस्तु कैसी है परंतु उसके भेद नहीं किए जा सकते, वो उससे भिन्न नहीं किए जा सकते, भिन्न है ही नहीं वो, वास्तव में वह भेद रूप नहीं है, अभेद है। ये भूल जाते हैं हम, भेदों में इतने उलझ जाते हैं क्योंकि वो तो सूक्ष्म 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 तक पहुंच चले जाते हैं और मूल अभेद रूप वस्तु को भूल जाते हैं। इस पर्याय से भिन्न, उससे भिन्न, केवल ज्ञान से भिन्न, सब भिन्न, पर कुछ नहीं रहता, ना द्रव्य में कुछ रहता है, ना वो पर्याय में कुछ रहता है। क्या कहते हैं? तो अभेद है। समय सार में भी शुद्ध नहीं कहा जाता, निश्चय ने भी नहीं कहा, शुद्ध ने कहा, शुद्ध ने तो अभेद को विषय बनाया। भेदों को जानकर उसको गौण करके अभेद अखंड वस्तु को लेना है ज्ञान। तो कहते वास्तव में वह भेद रूप नहीं है, अभेद है। अब शिष्य की आंखें खुली और यह अनुभव करने लगा, वह तो स्वतः सिद्ध निर्विकल्प अर्थात भेद रहित अखंड है, इसको कहते हैं शुद्ध दृष्टि। यहाँ शुद्ध शब्द का अर्थ राग रहित नहीं किंतु भेद रहित है। मैंने अभी कहा ना, शुद्ध नहीं का अर्थ होता है भेद रहित अभेद को विषय बनाने वाला वो शुद्ध नय है, तो भेद को नहीं देखना ये शुद्ध है। शुद्ध को देखना है ना, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, तो शुद्ध हूँ यानी वो पर्याय में शुद्धता की बात देखता है, उसकी बात नहीं यहाँ पर। शुद्ध का अर्थ क्या है? भेद रहित, जिसको यहाँ शुद्ध कहा है। अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ में आता है। जैसे जीव की पर्याय जीव की, वही उसकी शुद्धता है, वो कभी पुद्गल की पर्याय रूप हुआ ही नहीं, दूसरी द्रव्य रूप हुआ ही नहीं, वही उसकी शुद्धता है। ये भी अपेक्षा कहीं आती है, यहाँ तो भेद रहित को शुद्ध कहा। इस दृष्टि का पूरा नाम है शुद्ध द्रव्यार्थिक दृष्टि, अर्थात वह दृष्टि जो सत को अभेद रूप ज्ञान कराए। और आगे चलिए, गुरुजी ने शिष्य से पूछा यह पुस्तक किसकी है, तो शिष्य ने कहा महाराज मेरी। अब उससे पूछते हैं तू तो जीव है, चेतन है, पुस्तक तो अजीव है, जड़ है, यह तेरे कैसी हो गई? अब शिष्य फिर चक्कर में पड़ा और बहुत देर सोचने के बाद जब और कुछ उत्तर न बन पड़ा तो कहने लगा महाराज इस समय मेरे पास है, मैं पढ़ता हूँ, इसलिए व्यवहार से मेरी कह देते हैं, वास्तव में मेरी नहीं है। अरे बस यही बात है, पहले व्यवहार किसको कहते हैं? एक ही द्रव्य में ये द्रव्य गुण है पर्याय है, भेद करने को व्यवहार कहा था। अब यहाँ संयोग की अपेक्षा बता रहे, तो यही बात है, द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, यहाँ भी भेद से ऐसा कह देते हैं, यहाँ भी यह व्यवहार है, वास्तव में ऐसा नहीं है। यानी यहाँ वो कहते ना व्यवहार है, कहने के लिए कहते हैं, तो ये भी द्रव्य वस्तु में ये द्रव्य है, गुण है, पर्याय ये भेद है, वो वास्तव में नहीं है, कहने मात्र के लिए, वास्तव है नहीं, निश्चय। जो द्रव्य को भेद रूप कहे वह व्यवहार, और जो अभेद रूप कहे वह निश्चय, इसलिए इसका दूसरा नाम रखा निश्चय में। इस प्रकार इसको शुद्ध द्रव्यार्थिक हुआ, द्रव्यार्थिक दृष्टि, दृष्टि कहो नहीं कहो की बात है, निश्चय दृष्टि, भेद निषेधक दृष्टि यानी भेद का निषेध करने वाला, व्यवहार निषेधक दृष्टि। देखो निश्चय व्यवहार की नाम एक ही, एक ही अर्थ के अनेक शब्द है, निश्चय नय के ही नाम ये सब, उसको शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहो या दृष्टि कहो, निश्चय नय कहो या निश्चय दृष्टि कहो, भेद का निषेधक और व्यवहार निषेधक दृष्टि। देखो देखो ये नए चक्र आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे ना, व्यवहार तो खूब समझा समझाता है क्या, पूरी वस्तु को समझाता है, भेद कर करके सब कर करके समझता है, और निश्चय क्या करता है? उसका निषेध करता है, इसका व्यवहार का निषेध करता है। जिसने पूरी वस्तु को इतना समझाया है तो निश्चय का कार्य ये कि उसका भेद का निषेध कर दिया, उसी में उसकी सार्थकता है। अखंड दृष्टि, अभेद दृष्टि, अनिर्वचनीय दृष्टि आदि अनेकों नामों से आगम में कहा है, ये इसके अलग अलग नाम हमने देखे हैं। और आगे चलिए, अब शिष्य को तीसरी दृष्टि का परिज्ञान कराते हैं। ये दृष्टि और काम है वो कॉमन नहीं चाहिए, तीसरी दृष्टि का परिज्ञान कराते हैं। आचार्य कहने लगे कि अच्छा बताओ आत्मा में कितने प्रदेश है? वह बोला असंख्यात। पूछा व्यवहार से या निश्चय से? व्यवहार से, क्योंकि अब तो वह जान चुका था कि भेद व्यवहार से है। और फिर पूछा कि निश्चय से कैसा है? तो बोला अखंड देश। शाबाश, तू होनहार है, हमारी बात समझ गया। देख, वे जो व्यवहार से असंख्यात है वे ही निश्चय से एक अखंड देश है, पूरा एक अभेद है, अखंड है, इसी को कहते हैं प्रमाण दृष्टि। क्या कहा? जो व्यवहार से असंख्यात है वही वे ही जो प्रदेश के साथ मिलकर निश्चय से एक अखंड देश है। दोनों को स्वीकार किया, जो व्यवहार से असंख्यात है वे ही निश्चय से एक है पूरा नहीं। वो क्या हुआ, इसी को कहते प्रमाण नष्ट। जो ऐसा है वही ऐसा है, यही इसके बोलने की रीति है। ये विवाह प्रमाण का कथन ऐसा ही होगा, जो ऐसा है वही ऐसा हो गया। समय और चल, हम यही रुकेंगे 59 पर अभी आए हैं हम। जो ऐसा है वही ऐसा है। जावानी के ध्यान से सूझे लोक